स्वयं का संतुलन खो बैठते हैं, और जब भीतर से अपना संतुलन खत्म हो जाता है तो जो बाह्य चीजों को मैनेज करना चाहते हैं उसको भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट माना क्या, कल से लेकर के एक शब्द तो बार बार सुनते आ रहे हैं और पक्का भी हो गया होगा अब तक। हाँ, ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। और हाँ, ये ओम शांति शब्द के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट पूरा समाया हुआ है, पूरी उसकी कला कहो, सार कहो, ये इस एक शब्द में आ जाता है। ओम शांति शब्द जो है, जैसे दुनिया में गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय करते, ऐसा शब्द नहीं है, परंतु उसके पीछे एक अर्थ है। ओम शब्द के अंदर तीन अक्षर है, अ, उ और म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण, और म का मतलब है मन के विचार। आचरण, उच्चारण और मन के विचार, आज ये तीनों तीनों के बीच एकता नहीं है और इसीलिए जीवन में अशांति है। अगर ये तीनों को एक कर दिया जाए, यानी कि जो हम सोचे वही हम बोले और वही हम प्रैक्टिकल कर्म करें, ये तीनों में अगर सुसंवादिता आ जाए तो जीवन में शांति होगी। कई बार हम देखते हैं कि हमारे मन के अंदर बहुत अच्छे विचार चलते हैं, परंतु जब एक्सप्रेस करने जाते हैं तो क्या होता है, कुछ और ही निकल जाता है। अच्छा, बाद में जब होश आता है कि अरे मैंने ये बात कह दिया और अब उसका इफेक्ट क्या होगा, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और कितना व्यक्ति अलग भाव निकाल करके ये बात को मरोड़ सकता है और आगे किसी को कह सकता है, तो क्या होता है, शांति रहती है। अच्छा, जहां मौका मिलता है तो आप उस व्यक्ति को सॉरी कर देते हो, माफ करना, आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों को नहीं देखना, कहते हैं, है ना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है और मेरी वाचा कुछ और है, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है और इसलिए आप मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, है ना। और जहां सॉरी कहने का अवसर नहीं मिलता है और वो व्यक्ति चला जाता है, फिर क्या होता है, कितना टेंशन हो जाता है, अब ये उसको कहेगा, उससे कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो शांति नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है। कहां मैनेज करे अपने आप को, मेरे मन के अंदर तो इतने अच्छे भाव थे लेकिन लेकिन हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है, और जब कुछ और हो जाता है फिर कहते हैं पता नहीं, सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है और हुआ कुछ और है। अब तीनों में ही जब हार्मनी नहीं है तो जीवन में शांति हो ही नहीं सकती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट माना अपने भीतर की सिस्टम को ठीक करना। हमारी भीतर की सिस्टम सारी डिस्टर्ब हो गई है और इसलिए जीवन के अंदर जो चाहना है वैसा हम प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो भौतिकता के बीच में हो,
कोई भी स्थान पर हो,
लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट नहीं। इसलिए कहा कि वर्तमान समय मनुष्य का जीवन जो है एक समुद्री यात्रा की तरह है। जिस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब पहली बार यात्रा की थी, समुद्री यात्रा, उस समय दुनिया के कोई नक्शे नहीं थे और वो एक अनजान यात्रा पर निकल पड़ा। उसे ये भी नहीं मालूम था कि समुद्र की यात्रा किस प्रकार की हो सकती है, ये भी नहीं पता था। उसको ये भी नहीं अनुभव था कि समुद्र में किस प्रकार के तूफान आते हैं और वो तूफानों का सामना करने के लिए उसका जहाज सक्षम है या नहीं है, ये भी नहीं पता था। उसको ये भी नहीं पता था कि समुद्र में विचरण करने वाले जो जीव है, बड़ी बड़ी वेल मछलियां और शार्क मछलियां कैसी होती है। एक वेल मछली अगर उसके जहाज के नीचे आ जाए तो पूरे जहाज को हिला देंगी, ये भी नहीं पता था, क्योंकि उसके पहले किसी ने समुद्र यात्रा की नहीं थी। उसको ये भी नहीं पता था कि समुद्र के भीतर चलने वाले करंट कितने पावरफुल होते हैं। आज एक नदी के करंट कितने पावरफुल होते हैं तो समुद्र के करंट कितने पावरफुल होते हैं, ये उसको ज्ञान नहीं था। सिर्फ एक ही चीज उसके पास थी और वो था एक कंपास, जिस कंपास के सहारे जो उसको दिशा बताता रहा और उसके आधार पर वो चलता रहा और उसके सहारे वो कुछ हद तक सफल हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो आज का मनुष्य का जीवन है। हम भी एक ऐसे भविष्य में चल पड़े हैं जिस भविष्य का कोई भी व्यवस्थित नक्शा हमारे पास नहीं है। हमें ये भी नहीं पता है कि भविष्य में किस प्रकार का तूफान हमारे सामने आ सकता है। जो अमेरिका को पता ही नहीं था कि 11 सितंबर की घटना या इतना बड़ा तूफान उसके सामने आ सकता है, कल्पना में भी नहीं था कि जो पूरे देश को तो क्या विश्व को हिला देगा। ऐसे ही आने वाले समय में कैसे तूफान होंगे उसका हमें एहसास भी नहीं है और न उसके लिए हम कोई तैयारी रखते हैं। आने वाले समय में कौन से प्रकार के जीव हमारे पीछे लग सकते हैं, किस प्रकार के इंसान आज शार्क मछलियों जैसा या वेल मछलियों जैसा जो पूरा का पूरा निगल सकते हैं, उसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। आने वाले समय में हमारे अपने जीवन में या अपने ही समाज में किस प्रकार के अंडर करंट चल रहे हैं, बहुत पावरफुल करंट जो दिखते नहीं है, जो पूरा तहस नहस कर सकते हैं, उसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे पास कोई कंपास भी नहीं है जो हमें दिशा बताए या ये बताए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। तो आज का इंसान का जीवन किसके सहारे चल रहा है? भगवान भरोसे। भगवान कौन है? क्योंकि आज की दुनिया में इतने सारे भगवान हो गए हैं कि वो भी मालूम नहीं कि कौन सा सत्य है। तो किसके सहारे चल रहा है? परमात्मा कौन है वही तो मालूम नहीं है। अपने मन के सहारे, और मन जो सोचता है वो तो बोल नहीं पाते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट तो है नहीं, भीतर की सिस्टम डिस्टर्ब हो गई है, तो किसके सहारे चल रहा है? नियति तो आपके हाथ में है, जैसी आप बनाना चाहेंगे, डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। पता ही नहीं, बेसहारे। सवेरे उठो अच्छे मूड में है, एक घंटा बीता किसी ने फोन किया, कुछ समाचार दिया, माइंड अपसेट हो गया। एक घंटा बीता, न्यूज़पेपर में कुछ बातें पढ़ी, टेंशन हो गया। एक घंटा बीता, ऑफिस गए, वहां किसी ने कुछ बातें सुनाई, गुस्सा आ गया। एक घंटा और बीता, किसी ने कोई अच्छी बात सुना दी, खुश हो गए, बहुत अच्छा हुआ, है ना। एक घंटा और बीता, किसी ने और कुछ सुना दिया, नर्वस हो गए एकदम। तो घंटे घंटे पर हमारी मन स्थिति का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? सरकमस्टेंसेस के हाथ में है, परिस्थिति के हाथ में आपकी मानसिक स्थिति का रिमोट कंट्रोल हो तो कौन पावरफुल हो गया? हाँ, परिस्थिति वो पर है और आपकी मन की स्थिति है, पावरफुल वो हो गए तो आपका क्या रोल है इस संसार में? इसीलिए तो आवश्यकता है आध्यात्मिकता की, है ना, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेना चाहिए। क्योंकि आज के दुनिया में अगर लोग चाहे तो कोई बात सुनाकर हमको खुश कर देता है, लोग चाहे तो कोई बात सुना करके हमको गुस्से में ला सकता है, लोग चाहे तो किसी बात सुनाकर टेंशन में ला सकता है, तो आखिर एक दिन क्या होगा? अभी तो घंटे घंटे पर मन स्थिति बदलती है, रिमोट कंट्रोल दबता है। 5-5 मिनट में अगर ऐसे रिमोट कंट्रोल दबाना चालू हो गया तो क्या होगा? पागल हो जाएगा। आज इंसान दुनिया में क्या हो रहा है? डिप्रेशन में चला जा रहा है, हाइपरटेंशन में जा रहा है। कारण क्या? हाँ, मन स्थिति कंट्रोल में नहीं है, बैलेंस में नहीं है। इसलिए हमें भीतर से अपने हाथ में ये रिमोट कंट्रोल लेने की आवश्यकता है। और इसको हम कैसे लेंगे? क्योंकि अगर हमने नहीं लिया तो आप देखेंगे कि मान लो कि एक घटना आपके सामने आई है, एक घटना परिस्थिति आई है, और परिस्थिति जब आपके सामने आती है तो ये परिस्थिति हमसे कुछ डिमांड करती है, व्यक्ति से कुछ मांग करती है, डिमांड करती है। और क्या डिमांड करती है? एक प्रतिउत्तर की डिमांड करती है, रिस्पॉन्स, कि अब ये परिस्थिति आई है, ये घटना आई है, हमें किस तरह अपना प्रतिउत्तर देना है। अब मान लो कि इस वक्त मुझे गुस्सा आ गया, नेगेटिव हो गए। अब ये नेगेटिव भावनाएं जो अंदर में पैदा हुई वो कहां से निकलेगी? वो प्रभावित करती है हमारे व्यवहार को, क्योंकि निकलेगी तो हमारे बिहेवियर से ही बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी। तो ये रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को और यहां गुस्से के रूप में बाहर आती है। और ये गुस्सा जाकर के उसी घटना में, उसी परिस्थिति में शामिल हो जाता है। तो ये घटना या ये परिस्थिति उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी। अब जब उलझी, उसको सुलझा तो नहीं सके, तो और उलझी अगेन, फिर से एक रिस्पॉन्स मांगती है। अब डबल फोर्स से वो परिस्थिति आई, फिर से हमसे एक प्रतिउत्तर की मांग कर रही है, और ज्यादा गुस्सा आया, और ज्यादा गुस्सा यहां से निकला और अंदर जाकर शामिल हुआ, क्या होगा? और ज्यादा उलझती गई। और इस तरह उलझते 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 व्यक्ति खुद ही उसका शिकार बन जाता है, है ना। कारण क्या हुआ? फिर भले हम परिस्थिति पर दोष लगाए, व्यक्ति पर दोष लगाए, ये समय ऐसा था इसीलिए ऐसा हुआ, मेरा भाग्य ऐसा था इसीलिए ऐसा हुआ, दोष हम किसी पर भी लगा दे, लेकिन कारण क्या है? असली कारण ये है कि हमें प्रतिउत्तर देना नहीं आया। अगर उस वक्त थोड़ा शांति से, धैर्यता से सोच करके प्रतिउत्तर देते थे और शांति से व्यवहार में आकर के उसका प्रतिउत्तर देते थे तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? बस इतनी से तो बात करनी है, नहीं तो जैसे ये उलझती जाती है, जितना ज्यादा ये उलझती जाती है उतना ये विशस साइकिल एक ऐसा चक्र बन जाता है जिस चक्र में इंसान खुद ही फंस जाता है और उसका शिकार हो जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट शब्द में चार शब्द है, मैन प्लस एज प्लस मैन प्लस टी, चार शब्द समाये। हम दूसरों को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, दूसरों को हम कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, है ना। और जब उसी प्रकार की बात हमारे सामने आती है और हमने वैसा ही किया और वो सामने वाला व्यक्ति हमें कहने आता है, अरे भाई आप हमको तो बड़ी सलाह दे रहे थे, आपका क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम फिर भी वही कहेंगे, नहीं आपका केस बिल्कुल अलग ही था, मेरा केस बिल्कुल अलग ही है, आपके केस में तो अभी भी मैं यही कहता हूँ आपको चुप रहना चाहिए था, लेकिन मेरे केस में तो मुझे बोलना ही चाहिए था। स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि आपके जैसी मैंने भी गलती कर ली, है ना। तो दूसरों को हम कह सकते हैं उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद को, इसलिए कहा जाता है द मैन इज बिफोर द मैन, व्यक्ति खुद पहले है, दूसरे बाद में है। खुद को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं और दूसरों को हम सलाह देते हैं, और इसलिए खुद को मैनेज करने के लिए चाहिए एज। एज का मतलब क्या है, एज का मतलब आयु नहीं, किसी ने सही कहा है एज डज नॉट मैटर, इट इज द करेज, करेज यू नीड टू हैव, कितना आप में साहस और शक्ति है, है ना। आयु कितनी भी हो लेकिन व्यक्ति के पास वो शक्ति ही नहीं, और एक छोटा बच्चा क्यों ना हो लेकिन उसकी आत्मशक्ति बहुत कुछ करके दिखा देती है, समय पर उसकी सूझ जो है बहुत कुछ कर सकती है, है ना। तो इसलिए करेज, दूसरों को कहने की करेज तो हमारे पास होती है, लेकिन अपनी ये जबान जो है 2.5 इंच की जबान है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक कहावत है कि इस 2.5 इंच की जबान में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन चाहे तो वो किसकी हड्डी तोड़ सकता है, है ना। दो शब्द ऐसा बोल दो तो किसकी हड्डी तुड़वा सकता है, इतनी ताकत है उसमें, और अपनी हड्डी भी तुड़वा सकता है साथ साथ में, है ना। ज्यादा अपनी तुड़वाते हैं, तो इसलिए कहा कि साहस तो ये चाहिए सबसे पहले कि हम अपनी जबान को मैनेज करें। ये कान को मैनेज कर सकते हैं, सारा दिन हमको बातें सुनने को चाहिए, चाहिए ना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये फिर कोई अगर हमें कहता है तो हम क्या कहते हैं, अरे हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे कान से कभी निकलती है, एक कान का शेप देखो कैसा है, क्वेश्चन मार्क जैसा, है ना, क्वेश्चन मार्क के जैसा है ना। अब यहां से जो बातें जाएगी वो यहां क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, क्यों, क्या मतलब था, क्यों कहा उसने, क्या समझता है, कब कहा, कैसे हुआ, ये सब कितने क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और फिर ये यहां से तो निकलता ही नहीं है, फिर ये यहां से निकल जाता है, फिर क्या कहते हैं, जबान सरक गई, जबान सरक गई मेरी, यहां से बातें सरक गई, है ना। तो न इसको मैनेज कर सकते, न इसको मैनेज कर सकते, तो किसको मैनेज कर सकते हैं, न मन की स्थिति को मैनेज कर सकते हैं, आखिर किसको मैनेज कर सकते हैं। हम अपने जीवन की जिम्मेवारी उठाने के लिए भी सक्षम है, जहां ये छोटी छोटी चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हम अपने जीवन की जिम्मेवारी उठाने के लिए कैसे सक्षम है। हम अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाने के सक्षम है, ओम शांति हो गया ना। तो इसलिए स्वप्रबंधन आवश्यक है आज के युग में, है ना। तो सबसे पहले तो हमें करेज चाहिए अपनी इंद्रियों को मैनेज करने के लिए। खाली करेज नहीं, दूसरी चीज जो आवश्यक है वो है मैच्योरिटी, समझदारी, कब करना है। ये नहीं कि हर बार मुझे ही अपने जबान को कंट्रोल करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस विधि से करना है, ये भी समझदारी चाहिए। क्योंकि अगर हर बार हम अपने आप को कंट्रोल करते रहे ना, तो भी हालत ऐसी हो जाएंगी जैसे वो मेंढक जैसी। मेंढक की कहानी आप सभी जानते होंगे। प्रकृति में मेंढक है, मेंढक के पास बहुत सुंदर क्षमता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर सकता है। उसको पानी से बाहर निकालो, वहां भी एडजस्ट कर लेता है। उसको उठा करके ठंडे पानी के पतीले में डालो, वहां भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। उस पतीले को उठाकर स्टोव पर रखो और धीमी आंच पर गर्म करना चालू करो। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, वो मेंढक समझता है मुझे मालूम है कैसे अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करना, और वो एडजस्ट करने लगता है। जैसे पानी गर्म होता है वैसे वैसे वो एडजस्ट करता जाता करता जाता करता है। और फिर जब एकदम उबलने की तैयारी पर होता है और वो नहीं कर पाता है, और सारी ताकत तो उसने एडजस्ट करने में लगा दी, अब उसमें वो ताकत भी नहीं है कि पतीले से बाहर कूद जाए, और इसलिए वो बॉइल हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे हमें भी कहां एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। घर में एडजस्टमेंट करो, कार्यक्षेत्र पर एडजस्टमेंट करो, समाज में एडजस्टमेंट करो। आजकल तो बच्चों के साथ भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है, बुजुर्गों के साथ भी हमें करो, बच्चों के साथ भी हमें करो, सर्वेंट के साथ भी हमें करना पड़ता है ना। और हम भी एडजस्टमेंट करते 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 माहिर हो गए। अभी हमको आता है कैसे एडजस्टमेंट करना है ना, कैसे मैनेज करना है। अब हमने एडजस्टमेंट शुरू किया है, परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना सीख लो। परिस्थिति तो रोज की है, परिस्थिति के बिना जीवन नहीं, सो एडजस्ट। समस्याएं रोज की प्रॉब्लम है, एडजस्ट करो, है ना। तनाव रोज के हो गए हैं, एडजस्ट करो। अब तनाव के साथ, परिस्थितियों के साथ, समस्याओं के साथ एडजस्ट करते 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 धीरे धीरे वो परिस्थिति बॉइल होने लगती है। और जैसे ही बॉइल होने लगती है, हम एडजस्ट करते जाते हैं। फिर जब परिस्थिति एकदम बॉइल होने की तैयारी पर होती है, तो उस समय हमारे में वो ताकत भी नहीं रहती कि हम परिस्थिति से बाहर कूद जाए, और फिर हम परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। चाहे कोई ना कोई बीमारी के रूप में, वो परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते 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 ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज शुरू हो गया, हार्ट अटैक आ गया, शिकार हो गए ना। अरे पहले से ही समझदारी अपना करके ये साहस दिखाने का प्रयत्न नहीं करो कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी एडजस्टमेंट बहुत अच्छा गुण है, लेकिन कब, कितना, कैसे, कितनी, किस विधि से करना है, ये समझदारी अगर नहीं है, तो भी हम एक न एक दिन वो परिस्थिति के शिकार हो जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि पहले से ही बाहर कूद जाओ, शिकार नहीं होंगे। तो समझदारी चाहिए। और तीसरा, एक्सपीरियंस। एज का मतलब है एक्सपीरियंस, अनुभव। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, अनुभवी बनता जाता है। इसीलिए तो कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, है ना। अनुभवी इतना आगे पहुंच सकता है, लेकिन हर बार इस युग के अंदर हम अपने अनुभव के आधार से नहीं चल पाते हैं। अनुभव भी कभी कभी खत्म कर देते हैं हमें। एक उदाहरण याद आता है मुझे। एक बार एक मछली थी, छोटा सा एक्वेरियम जो होता है, मछली घर, उसमें एक छोटी मछली थी, तैरती रहती थी, अपने मौत से जीवन गुजारती थी। एक बच्चा रोज स्कूल जाता था, वो दुकान जब बीच में आती थी वहां खड़ा हो जाता था, उसको मछली बड़ी प्यारी लगती थी, वहां खड़ा हो जाता था, देखता रहता था थोड़ी देर, फिर जाता था स्कूल। आते समय भी थोड़ी देर खड़ा हो जाता था, देखता रहता था और फिर घर जाता था। एक दिन वो अपने घर से थोड़ी सी ब्रेड लेके आया और वो दुकान वाले से पूछा, मैं इस मछली को डालकर खिला सकता हूं? कोने में खुला था। उसने कहा भले। तो वो बच्चे ने वो कोने में खड़ा हो करके वो ब्रेड के टुकड़े कर करके डालने लगा। जैसे ही ब्रेड नीचे आता था, मछली ने देखा, तुरंत उस कोने में गई, वो ब्रेड का टुकड़ा खा लिया, ले लिया मुंह में और तैरने लगी। बच्चे को बड़ा अच्छा लगा, वो डालता गया। मछली बार बार आती थी उस कोने में, लेकर चल देती थी, आती थी लेकर चल देती थी। बच्चे को बड़ा मजा आ रहा था, रोज थोड़ी थोड़ी ब्रेड लेके आता, रोज खिलाता था। एक दिन उसको शैतानी सूझी। उसने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा ले आया और कांच का टुकड़ा बीच में रख दिया। ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस था और ब्रेड डालता गया। अब मछली देख सकती है ब्रेड आ रही है नीचे। जैसे उसका अनुभव था, लेने के लिए उस कोने में जाती, उसका नाक टकराता है। उसको समझ में नहीं आता, ये अब तक तो ये ब्रेड दिखाई दे रही है, ये मुंह में क्यों नहीं आ रही है? फिर तैरती गई, फिर आई जोर से, और जोर से उसका नाक टकराया। बच्चे को बड़ा आनंद आ रहा था, हंस रहा था, मजा ले रहा था, और ब्रेड का टुकड़ा डालता गया। मछली और जा करके फिर आई, तीन चार बार मछली को जोर से लगा। मछली ने समझ लिया, अब पता नहीं ये दिखता है, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं था वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का। पता नहीं ये क्या बीच में आ रहा है, जब मैं अपना खाना नहीं ले सकती हूं। फिर उसने उस कोने में जाना ही छोड़ दिया, इधर उधर तैरती रही। बच्चे को बड़ी दया आ गई, उसने वो कांच का टुकड़ा निकाल दिया, ब्रेड डालता रहा, मछली को बुलाने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन नहीं आती। उतने में एक दूसरी मछली आई, देखा अरे इतना सारा खाना पड़ा है यहाँ, तो जा करके उठा लिया। वो मछली देखती रही, अरे इसको कुछ नहीं हुआ और मैंने इतना प्रयत्न किया, मुझे मिला नहीं। एक दिन वो मछली मर जाती है, पहले वाली मछली। कैसे मरी? अनुभव ने मारा उसको, कि अनुभव उसको हुआ, इसलिए उसने कोने में जाना छोड़ दिया। और दूसरे को जब देखती थी, उसको इतना सारा मिल गया और मुझे लगता रहा, तो इसलिए वो मरी। अनुभव ने उसको मारा, इसलिए उसने उस कोने में जाना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया। कह रहे वो कांच का टुकड़ा निकल गया, वो उसको ज्ञान नहीं था। ऐसे ही जीवन में चलते चलते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते चलते कुछ आदत बना देते हैं अपनी, और आदतों के हिसाब से काम करने लगते हैं, और हर बार सफलता मिलती है। इस विधि से किया सफलता मिली, इस विधि से किया सफलता मिली, और कभी कभी वो कांच के टुकड़े बीच में आ जाते, मेहनत कर करके थक जाते हैं, सफलता दिखाई देती है, सामने पड़ी है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। फिर सोचते शायद हमारे नसीब में है ही नहीं। क्या सोचते? नसीब में नहीं है, छोड़ देते पुरुषार्थ करना। और वहीं हमारे सामने सामने कोई दूसरा आता है और थोड़ी सी मेहनत में उठा लेता है वो सफलता, उस समय क्या होता है, तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। और बार बार अगर इस तरह से हमारे हाथ से सफलता जाती रही, तो एक न एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अनुभव मारता है, अरे इस समय के अंदर हर वक्त समय परिस्थिति हमसे नवीन प्रतिउत्तर की मांग करती है, वही के वही पुरानी आदतों के हिसाब से नहीं चलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। हर वक्त नवीनता चाहिए, और जितना आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, जितना आपके अंदर रचनात्मकता होगी, उतना उस रचनात्मकता के आधार पर जो प्रतिउत्तर देते हैं, उससे हम उस परिस्थिति में भी विजयी हो जाते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए समय के हिसाब से ये तीन चीज आवश्यक है। कभी कभी अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है, कभी कभी हमें परिस्थिति से बाहर कूदने की आवश्यकता है, और कभी कभी नवीन रचनात्मक अनुभव को क्रिएट करने की आवश्यकता है। और जितना अपने अंदर नवीनता ला सकते हैं और उस नवीनता के आधार पर प्रतिउत्तर हम दे सकते हैं समय, परिस्थिति, घटनाओं को, उतना हमें जीवन के अंदर सफलता प्राप्त हो सकती है, उतना हम सेल्फ मैनेजमेंट अपना ठीक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और दूसरे को मैनेज करने की कोशिश नहीं करो। जब खुद अपने जीवन को इस तरह से मैनेज करना सीख लेते हैं, हम अपने जीवन की जिम्मेवारी उठा ले बस, और जब हम अपने आप को मैनेज करना सीख लेते हैं तो दूसरे अपने आप हमसे प्रेरणा लेना चालू करते हैं। वो स्वयं सामने से आकर के पूछेंगे, भाई इतनी बड़ी परिस्थिति आपके सामने आई, फिर भी आपने कैसे उसको पार कर लिया? कोई टेंशन नहीं देखा आपके चेहरे के ऊपर, कैसे पार हो गई, है ना? इसीलिए कई बार कहते हैं, बात छोटी सी होती है लेकिन प्रति उत्तर देना जब नहीं आता तो बढ़ते 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 राय का पहाड़ हो जाता है। और कभी कितनी बड़ी बात भी आ जाती है लेकिन अगर सही उत्तर दिया तो बड़ी बात भी एक राउंड में सुलझ जाती है और पहाड़ का राय हो जाता है। तो राय का जो पहाड़ करते हैं ना, उसमें जो टाइम, मनी, एनर्जी खत्म होती है, वो वापस तो आएगी। वो टाइम जो चला गया, फिर कितना भी टाइम मैनेजमेंट कोर्स कर लो, टाइम कहां जा रहा है? गलत प्रतिउत्तर दे रहे हैं उसमें, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतना उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है। अगर एक बार में उसको सुलझने तो कितना टाइम बच जाएगा, कितनी एनर्जी बच जाएंगी, और धन कितना बच जाएगा बाद में, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये परिस्थिति, तो कितना धन खर्च करो, उसको दो, उसको दो, वकील को दो, जज को दो, इसको दो, कितनों को दे करके भी वो सुलझती नहीं। तो टाइम, मनी और एनर्जी तीनों ही हमारा वेस्ट जाता है। उसके बदले पहले से ही अगर ठीक प्रति उत्तर दिया तो, लेकिन पहले से जब गलत प्रति उत्तर देते हैं, बाद में अगर रियलाइज भी किया ना और सुधारना भी चाहे, पॉजिटिव हो जाना चाहे, तो लोग क्या कहेंगे? झुक गया ना आखिर। और उस समय वो हमारा ईगो बीच में आ जाता है, और ईगो को फिर बीच में, जब ईगो प्रॉब्लम हो जाता है तो अभी कुछ भी हो जाए झुकना नहीं है ना। तो झुकना नहीं है तो क्या होगा? ये सुलझेगी ही नहीं, और जीवन भर तक खींचते चले जाएंगे उसको। बात छोटी होगी, सुलझने की जैसी होंगी, लेकिन क्योंकि सुलझाना आता नहीं है इसलिए खींचते चले गए, चले गए, चले गए, तो 2-4 साल 10 साल तक भी चलती है। और फिर बाद में हमें कितना सफर करना पड़ता है, कितना भोगना पड़ता है, ये भी हमें अंदाज नहीं। ईगो क्या है? ईगो किसको कहते हैं? ये तो उसका समानार्थ शब्द है। इसको मतलब क्या है? ईगो का मतलब क्या है? वही, उसका समानार्थ शब्द नहीं चाहिए। मैं, अहम, ये सब समानार्थ शब्द है, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है? किस प्रकार की स्टेट ऑफ माइंड है? वही, उसका भावार्थ नहीं चाहिए, समानार्थ या भावार्थ नहीं चाहिए, उसका डेफिनेशन चाहिए। देखो, हमें सबको पता है कि ईगो, व्यक्ति को जब ईगो आता है तो बोल देते हैं इसको ईगो है, लेकिन उसका डेफिनेशन मालूम नहीं। एक चीज हम हमेशा करते आए हैं और वो चीज है सोचने की क्रिया। सवेरे भी हमने सत्र में देखा कि हर वक्त हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। सोचना एक नेचुरल प्रक्रिया हो गई है, चलती रहती है, थिंकिंग कांस्टेंट चलता है, और जैसी हमारी थिंकिंग होती है वैसे ही हमारी फीलिंग्स होती है, वैसी हमारी भावनाएं होती है, और जैसी हमारी भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, वैसी हम व्यवहार तो बाद में होता है, उसके पहले हमारे एटीट्यूड वैसे होते हैं, है ना, मनोवृत्ति। और जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसी ही हमारी हाँ वैसा हमारा व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है या एक्शन होता है, और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा ही हमारा हाँ जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसे ही हमारा हाँ वैसे ही कर्म, वही कर्म व्यवहार, वैसे ही हमारा कैरेक्टर कहो या पर्सनालिटी, संस्कार होते बनते जाते हैं ना, और जैसी हमारी पर्सनालिटी होंगी वैसी हमारी डेस्टिनी होती है। इसीलिए कहते हैं डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। वैसे धार्मिक रूप से कहा गया है कि कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन कर्म का भी आधार कहाँ है? सोच। इसलिए जिस प्रकार का सोच चलाएंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा, है ना। और ये हमारी अपनी मैकेनिज्म है, ये और किसी की नहीं है, ये हमारी अपनी है ना। सेल्फ मैनेजमेंट जो हमें करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन सी मैकेनिज्म को ठीक करेंगे तो अंत तक सब ठीक चलेगा, है ना। लेकिन ये थिंकिंग जो अच्छी या बुरी चलती है वो कैसे होती है? किसी एक व्यक्ति के बारे में एक ने कहा ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये बहुत बुरा व्यक्ति है। अब दोनों की थिंकिंग एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग है, तो थिंकिंग को शेप करने वाली कौन सी ऐसी हमारी मैकेनिज्म? इतना याद रखना, सेल्फ मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है, यू कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन टू अदर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो कौन सी हमारी इंटरनल मैकेनिज्म है जो हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है? दृष्टि, परसेप्शन। जैसा आप व्यक्ति को देखते हैं, परसीव करते हैं, वैसी आपकी थिंकिंग होगी। इसलिए कहा जाता है ना, पीला चश्मा पहनेंगे तो सब पीला ही पीला नजर आएगा, तो उसकी थिंकिंग भी वैसी ही हो जाएंगी, है ना। तो जैसा दृष्टिकोण होगा आपका किसको देखने का, वैसी आपकी थिंकिंग चलेगी, ठीक है। अच्छा, वो दृष्टिकोण कैसे बना वो दृष्टिकोण कैसे बना? एक्सपीरियंस से, पूर्व अनुभव। पूर्व कुछ अनुभव हमें ऐसा मिला, अच्छा मिला, तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस, तो हमारा दृष्टिकोण अच्छा हो गया। दूसरे को बुरा एक्सपीरियंस मिला तो बुरा उसका दृष्टिकोण बन गया और उसकी थिंकिंग वैसी होने लगी, राइट। लेकिन ये एक्सपीरियंस हमको कैसे मिलता है? नहीं, सर्कल नहीं है, हम रूट्स तक जाते हैं, कहां हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, और वहां पर नहीं ठीक करते हैं, इसीलिए वहां ठीक न होने के कारण ईगो आ जाता है। मैं ईगो आपको बताना चाहती हूँ, ईगो किसको कहा जाता है ना। लेकिन हम पहले मूल तक तो पहुंचे, क्योंकि वहां ईगो कनेक्टेड है। ईगो फिर यहाँ प्रदर्शित होता है, यहाँ सब रूप में प्रदर्शित होता है, लेकिन उसका रूट कहाँ है? तो ये अनुभव, एक व्यक्ति को अच्छा अनुभव मिला, एक व्यक्ति को बुरा अनुभव मिला, ये अनुभव कैसे मिलता है? जरूर उनके व्यवहार में कुछ प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? क्या अच्छा या बुरा? कर्म में कौन सी बात प्रयोग में हुई, अच्छी या बुरी? कहा ना, दूसरे पर दोष नहीं डालना। दोष दूसरे पर डाला ना, इसलिए उन्होंने रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में ले लिया। परिस्थिति ने रिमोट कंट्रोल कैसे ले लिया? हमने दिया, उसने लिया नहीं, हमने दोष डाल करके उसको दे दिया। अब तुम मुझे चला सकती हो, जैसे तुम मुझे पागल बनाना चाहो तो पागल बना सकते हो, अच्छा बनाना चाहो तो अच्छा बना सकते हैं। तो अब किसी को देना नहीं है और दोष भी नहीं देना, अपने आप को ठीक कर देना। तो वो अनुभव जो मिला हमें, कौन सी ऐसी चीज का प्रयोग हुआ है, कर्म में क्या अच्छा अच्छा या बुरा इसको क्या कहेंगे, या वैल्यूज का प्रयोग हुआ है या वीकनेस का प्रयोग हुआ है, दोनों में से एक का प्रयोग हुआ है। अगर मैंने दूसरे को गुस्सा करके कुछ बात समझाई तो वो क्या करेगा, वो भी गुस्से से ही प्रत्युत्तर देगा। मैंने गाली दे करके कुछ बोला तो वो भी गाली देगा। मैं शांति से प्यार से बात करती हूँ तो वो भी शांति से प्यार से बात करेगा। तो ये अनुभव जो मिलता है हमारे ही अपने वैल्यूज या वीकनेस के प्रयोग से हमें वो अनुभव मिलता है। अच्छा या बुरा जो प्रयोग किया गया है हमारे कर्म या व्यवहार में, उसी से हमको वो अनुभव मिला। ठीक है, वैल्यूज इन बॉर्न है, जो बताए ना आत्मा के सात गुण और सात अवगुण, बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आ जाते हैं तो सात अवगुण आ जाते हैं। नहीं, बिहेवियर में जो हाँ, लेकिन वही बिहेवियर में क्या प्रयोग हुआ। आज आप ऑफिस जाते हो, आप अपने बॉस के सामने जाओ, बॉस अगर गलत भी बोल रहा है तो भी आप क्या कहेंगे, यस सर करेंगे, करेंगे ना। कैसा व्यवहार रहता है आपका, वैल्यूज वाला, रिस्पेक्ट, सोच के नहीं दे रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली वो निकल रहा है। और वही आपका सर्वेंट या प्यून हो, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, हाँ, सोचते थोड़ी है कि मुझे इससे अच्छा व्यवहार करना, इससे बुरा व्यवहार करना, सोचते हैं क्या अपने आप। तो ये अपने आप जो वैल्यूज या वीकनेस निकलती है उसको स्टिम्युलेशन कहां से मिलता है, फिर परिस्थिति पर दोष डाला। देखो ये कितना नेचुरल हो गया है, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो घुटने करते हैं, और घुटने करते जब वो खड़ा होना सीखता है ना, टेबल पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है, या चेयर पकड़ के, या कोई भी चीज पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है। अब वो जब ठीक से पकड़ नहीं पाता है और गिर जाता है, गिर जाता है तो क्या करता है, नहीं फिर से नहीं करता है, वो चारों ओर देखता है। और अगर उसको दिखाई दिया कि किसी ने मुझे देखा तो रोने लगता, किसी ने नहीं देखा ना तो पीछे फिर से खड़ा होना चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही चारों ओर देखा और उसको कुछ दिखाई दिया कि कोई मुझे देख रहा है, तो तुरंत वो रोना चालू करता है। और रोना चालू करेगा तो उसकी माँ या जो भी देख रहा होता है वो क्या करेगा, तुरंत दौड़ के आएगा, कुछ लगा क्या, और वो रोता ही है, आंखों में से एक भी आंसू नहीं गिरता है लेकिन रोता है, सेल्फ डिफेंस, कि अभी मुझे मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, कि नहीं अगर कुछ लग जाता था तो, इसलिए वो सेल्फ डिफेंस जो है अपना पहले ही तैयार कर लेता है। कितना समझदार है बच्चा, है ना, बड़ों को अच्छी तरह उल्लू बना सकते हैं वो। और जैसे ही वो रोता है ना तो बड़े क्या, नहीं नहीं तेरा दोष नहीं था, ये टेबल ऐसा था, ऐसे करके उसको मारते हैं। और उसको मारा ना वो चुप हो जाता है कि अब मेरा दोष नहीं है, टेबल का दोष है, अब दोष टल गया। उस वक्त से उसके अंदर ये संस्कार आ गए कि कुछ भी होता है ना दोष दूसरे पर डाल दो। और तब से लेकर के हमने ये सीख लिया कि अब कुछ भी जीवन में होता है, रोना चालू करो, चिल्लाना चालू करो, बड़े होने के बाद रोते नहीं है, गुस्सा करना चालू करते हैं, चिल्लाना, कोई देख लिया तो गुस्सा करना चालू कर देते हैं। और जब दोष टल जाता है ना, गुस्सा करने के बाद वो काम नहीं कर सकता है, आप देखना वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, एक दो घंटे तक वो काम नहीं करेगा। गुस्सा करने के बाद क्या करेगा, एक दो घंटे तक दो चार लोगों को ढूंढेगा और उनको बताएगा, मैंने जो इसके ऊपर गुस्सा किया ना वो ठीक किया, ये हर बार ऐसा करता है, ये हर बार उसकी ये आदत है, ये ना अपना जस्टिफिकेशन देते हैं। और अगर उसको दो चार लोग मिल गए कि हाँ तुमने ठीक किया, तब उसको शांति मिलती है, क्योंकि दोष टल गया, है ना। और अगर लोगों ने, दो चार लोगों ने उसको ये कह दिया, नहीं नहीं तुमने ठीक नहीं किया, है ना, तो हमने दूसरों को अपना रिमोट कंट्रोल कैसे दिया? दोष डाल करके उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया। और इसलिए हर बार जब परिस्थिति आएगी तो या गुस्सा आएगा या चिड़चिड़ापन आएगा या कुछ भी आएगा, ये रिमोट कंट्रोल आपने ही तो दिया है उसको। इसलिए आज से लेकर के सेल्फ मैनेजमेंट अगर करना है तो परिस्थिति पर दोष मिला। कौन जिम्मेवार है? कुछ भी हुआ मैं खुद जिम्मेवार। तो आपका ये मनस्थिति जो है ना, आपके कंट्रोल में रहेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है मानसिक रूप से। अब ये वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग किस आधार पर होता है? मान्यता। कुछ मान्यता मैंने अपने अंदर बना लिया है, यही सही है, यही गलत है। अब ये मान्यता को मैं इतना पकड़ के रखती हूं, उसको छोड़ना नहीं चाहती, और उसी के कारण वैसे वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग होता है। आप बॉस के सामने जाओ, मान्यता के अंदर ये भरा है, ये मेरा बॉस है, इसलिए मुझे सामने जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में है, ये मान्यता है ना, इसलिए आप वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। और प्यून के सामने आपकी मान्यता में ये है, ये तो प्यून है, इसको कुछ भी डांटेंगे करेंगे, कहीं जाने वाला नहीं है, वापस यही आएगा, तो आप वीकनेस का प्रयोग करने लग जाते, मान्यता। तो ईगो क्या है? जब भी कोई भी गलत मान्यता को हम पकड़ लेते हैं अंदर में, उसको पकड़ लेते हैं और उसको ही सही समझते हैं, उससे हटना नहीं चाहते हैं, उस पर अड़े रहते हैं, ये है ईगो। ईगो माना इट्स द अटैचमेंट टू अ रॉन्ग बिलीफ दैट आई हैव एडॉप्टेड फॉर माई सेल्फ। गलत है वो मान्यता, सही नहीं है, हा? मैं बहुत बुद्धिवान हूं। अब ये मान्यता को मैं जब पकड़ लेती हूं कि मैं बहुत बुद्धिवान हूं, तो मेरा हर कर्म व्यवहार कैसा होगा, हा? उसी के अनुसार के दूसरा अगर कोई मुझे अच्छी बात भी सुनाता है तो मैं क्या कहूंगी? आपको आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है ना। तो हर बात में वो अपनी बुद्धि को ज्यादा समझदार है ऐसा सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? इसको अपना बुद्धि का बहुत अभिमान है। किसका अभिमान है? बुद्धि का अभिमान है। अच्छा, किसको अपने धन का अभिमान होता है, तो क्या करता है वो? धन ही सब कुछ है, उसकी मान्यता में क्या है? धन है तो सब कुछ है, तो जहां भी बात करने बैठेगा तो क्या कहेगा? पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो ये है, पैसा है तो वो है, पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं, पैसा है तो ऐसा कर सकते हैं, यहां पहुंच सकते हैं, वहां कर सकते हैं, ये काम कर सकते, तो लोग क्या कहेंगे? इसको अपने धन का बहुत अभिमान है, अरे उसको ये मालूम नहीं धन आज है और कल चला जाएगा, कहते ना ऐसे। तो जिसको जिस बात का अभिमान होता है ना, माना एक गलत मान्यता को उसने पकड़ लिया है और उसी से ही वो जी रहा है और उसी के आधार पर उसका ये सारा सिस्टम चल रहा है भविष्य तक, उसकी भावी भी उसी के आधार पर बना रहा है या बिगाड़ रहा है। इसलिए तो आज के जमाने में बच्चे भी माँ बाप को क्या कहते हैं? पिताजी आज के युग में जीना है तो आपको थोड़ी अपनी मान्यता को बदलना होगा, कहते हैं ना, सलाह देते हैं बच्चे हमको कि आज की दुनिया में अगर बहू बेटों के साथ आपको जीना है और उनके साथ मिलकर रह करके चलना है तो आपको अपनी मान्यता को बदलना होगा, और नहीं बदलेंगे तो डेस्टिनी क्या होगी? हाँ, डेस्टिनी क्या होगी? आखिर घर टूट जाएगा, अलग हो जाएंगे, यही डेस्टिनी है, क्योंकि ये सारी सिस्टम उसी के आधार पर चलनी है। अगर इसको नहीं बदला तो ये कुछ भी नहीं बदल सकता है, और ये भावी को आपको फेस करना ही पड़ेगा। फिर उस समय जब दर्द हो तो ये नहीं कहना कि ऐसी भावी क्यों आई, क्योंकि हमने अपनी गलत मान्यता को छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। इसलिए तो कई बार बचे गए, इसको अपना अभिमान इतना है ना, ये छोड़ने वाले है नहीं। कई बार कई लोग यहां भी आते हैं ना, तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियों की बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी मान्यता, अब मेरी मान्यता आ गई तो क्या परिवर्तन होगा? होगा कुछ भी? यहां से जाएंगे ना तो जैसे है वैसे ही चले जाएंगे, कुछ भी धारण नहीं करेंगे, क्योंकि पहला ही ब्लॉकेज, ये दरवाजा बंद कर दिया कि मुझे अपनी मान्यता को बदलना नहीं, कुछ भी बदलेगा नहीं। यहां तक आया, प्राप्त किया, लेकिन सब बह गया, कुछ भी अपने पास रखा नहीं। मान्यता बनने के बहुत आधार है, मान्यता बहुत बातों से बनती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, फिर मीडिया, आजकल टेलीविजन से बच्चे देखो कितना कुछ सीख जाते हैं, जिस चीज को ब्रेन नहीं, एक्सपीरियंस तो बाद में जीवन में मिलता है ना उसको, लेकिन उसके पहले चलो फैमिली बिलीफ, फैमिली बैकग्राउंड जैसा है उसका, वैसी मान्यता बन जाती है। तो एक्सपीरियंस तो बाद में ही मिलना है उसको, पहले तो उसकी बिलीफ बनी क्योंकि घर में ऐसा वातावरण था। अब वो वातावरण में वो बड़ा हुआ तो घर में जो चीज देखी उसने, उसको मीडिया एक्सपोजर नहीं है, तो उसकी जो मान्यता होंगी वैसे ही उसके वैल्यूज होंगे, और वैसे ही उसके व्यवहार और उसमें एक्सपीरियंस, उसको वैसा ही मिलना है। एक्सपीरियंस पहले से थोड़ी मिल जाता है, एक्सपीरियंस तो बाद में ही मिलता है। अब उसका भी ईगो आ जाता है, ओपन माइंडेड कहता है लेकिन ओपन होता नहीं है, है ना, होता नहीं हो, कहने में कह देता है आई एम ओपन माइंडेड, लेकिन वो सोचता है ना, ईगो माना ही रॉन्ग, ईगो माना ही गलत, गलत मान्यता है, ओपननेस में भी उसने गलत मान्यता को अपना लिया है, इसीलिए वो ईगो बन गया है उसका, और ईगो माना ही गलत। अच्छा, क्योंकि जहां ईगो, जहां ये अटैचमेंट, ये बिलीफ के साथ, रॉन्ग बिलीफ से जब व्यक्ति अटैच्ड हो जाता है, मेरा बहुत लगाव है और उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूं, उस मान्यता को मैं पकड़ के रखती हूँ, छोड़ना नहीं चाहती, तो मैं भ्रम में जीने लगती, आई स्टार्ट लिविंग इन इल्यूजन कि मैं ही राइट हूं, मैं ही समझदार हूं, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही वैसा हूं, सो वी स्टार्ट लिविंग इन इल्यूजन। और जब इल्यूजन में जीने लगते हैं तो कैसे पता चलता है, ओपननेस भी अगर है, ये भी एक इल्यूजन है, कई बार उसका पता कैसे चलता है कि किसी ने अगर कोई विचार दिया ना तो रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं, ऐसे होना चाहिए, है ना, तुरंत अपना करेक्शन देते हैं हम। ओपननेस मीन्स चेंज, समय प्रति समय एक परिवर्तन अपनी मान्यताओं में भी लाते जाओ, नहीं रेजिस्टेंस दूसरों से नहीं, हम रेजिस्ट करते तो ओपननेस कहेंगे ना। यू हैव टू चैलेंज योर ओन बिलीव्स कि नहीं, आज के युग में ये भी बदल सकता है, चेंजेबल है, है ना? तो ओपननेस उसी को कहा जाता है कि जहां हम अपनी मान्यताओं में फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं, और जितनी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है उतना आपका रेजिस्टेंस नहीं होगा, एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा, वो ओपननेस है। जितना आप एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरों के विचारों को, उतना आपका ओपननेस ज्यादा माना जाएगा, यस, है ना। और ये रेजिस्टेंस जब आता है तब क्या होता है, रेजिस्ट मैंने किया तो उसका परिणाम क्या होता है? फियर, फियर ऑफ बीइंग चैलेंज्ड, कि मैंने अब उसकी बात को रेजिस्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, कल को ये उसी बात को लेकर मुझे चैलेंज कर सकता है, इसलिए मुझे भय लगने लगेगा। फियर ऑफ बीइंग चैलेंज्ड, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, कि पता नहीं वो मेरे लिए जाकर के बाहर क्या बोलेगा, एक भय। एंड वेर एवर देर इज दिस फियर, फियर इज इक्वल टू ईगो, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। और ये हर्ट किसको होता है? फियर ऑफ बीइंग हर्ट, कि किसी ने अगर क्रिटिसाइज किया तो मुझे हर्ट फील होगा, बुरा लगे। तो ये बुरा किसको लगा? अभिमान को, ईगो को, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। हर्ट किसको हुआ? इसलिए पता चलता है, अगर फियर है आपके अंदर तो ईगो है, अगर फियर नहीं। महात्मा गांधी को कोई फियर था ही नहीं, मदर टेरेसा को कोई फियर था ही नहीं, कहां भी चले जाते थे, कैसे भी रोगियों को ट्रीट करते थे, उनको फियर था कि मेरे को ये लेप्रसी लग गई तो। ईगो नहीं था ना उसके अंदर, ईगो नहीं था इसलिए फियर भी नहीं था। आज व्यक्ति के अंदर जितना ईगो ज्यादा, उतने बॉडीगार्ड्स उसको ज्यादा रखने पड़ते हैं, है ना। बॉडीगार्ड्स किस लिए चाहिए? भय है ना अंदर में, किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने यो वो कर दिया, तो वाली बात है ना। ये तो ईगो है, तो ईगो है अंदर में, ये समझ लेने का। सो ईगो इज द अटैचमेंट टू अ रॉन्ग बिलीफ दैट आई हैव क्रिएटेड अबाउट माई सेल्फ, जो अंदर में फियर क्रिएट करती है। जब ये फियर होता है तो ईगो है ही है, कोई भी प्रकार का ईगो होगा उसको, या धन का, क्योंकि ईगो कई प्रकार के होते हैं। किसी को अपनी बुद्धि का ईगो है, किसी को अपनी एजुकेशन का ईगो है, किसी को अपनी पोजीशन का ईगो है, किसी को अपने मान मर्तबा का ईगो है, किसी को अपने धन का ईगो है, किसी को अपनी गाड़ी का ईगो होगा। हम भाई उसकी गाड़ी को स्क्रैच हो गया तो उसका टेम्पर आउट हो जाता है और बार बार उसको भय रहता है, मेरी गाड़ी को कोई कुछ ना करे, स्क्रैच न करे, फियर। और अक्सर देखा जाता है जितना उसको भय हो करके वो साइड में भी खड़ा वही उसको लगेगा। ये भी कुदरत का नियम है, है ना। जितना ज्यादा उसकी संभाल करेंगे ना, उतना ज्यादा वो हर्ट होता है, उसी पर ही हर्ट होता है, और उसका ईगो बार बार हर्ट होता है, और इसलिए उसका रिमोट कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो वहां पर सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होता है। डेस्टिनी कैसे शेप करता है? एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक कंपनी का मालिक है, और कंपनी का मालिक है अपनी ऑफिस में बैठा है, उसके कंपनी में एक यूनियन प्रॉब्लम है। एक दिन सुबह सुबह वो ऑफिस में जाता है और एक यूनियन लीडर उसको मिलने आता है। उसने सेक्रेटरी से कहा, मुझे साहब से मिलना है, 10 मिनट का टाइम चाहिए। उसने कहा, बैठो, मैं अभी टाइम लेकर के देती हूँ। अंदर जाकर उसने सुनाया उसको, मालिक को, कि भाई फलाना यूनियन लीडर आपसे 10 मिनट मिलना चाहते हैं। मालिक ने कह दिया, होगी कोई नई डिमांड्स उसकी, है ना, तो सुबह सुबह दिन खराब करेगा, उसको शाम को बुलाओ, है ना। अब उसको शाम को टाइम दे दिया। शाम को वो आया, उस वक्त कोई गेस्ट आए थे, मालिक उस गेस्ट को अटेंड करने में बिजी हो गया, नहीं मिल सका। दूसरे दिन सुबह आया, मीटिंग्स में बिजी हो गया वो मालिक, नहीं मिल सका। दूसरे दिन शाम को आया, वो गेस्ट को लेकर के बाहर कहीं चले गए साइड पर, नहीं मिल सका। तीसरे दिन से वो यूनियन लीडर 10 दिन की छुट्टी लेके चला गया। 10 दिन के बाद कोई इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मालिक की गाड़ी भी प्रवेश हुई और उसी गेट से वो यूनियन लीडर भी एंटर हो रहा था। उस वक्त उसने देखा तब उसको याद आया ये 10 दिन पहले आया था, पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रहा हो, बाद में दिखाई नहीं दिया। जाते ही पहला उसको बुलाते हैं, भाई उस दिन तो माया लेकिन मैं बिजी हो गया, मैं नहीं मिल सका, आई एम सॉरी, लेकिन क्या काम था आपको बताओ। वो यूनियन रीडर ने कहा जिस काम के लिए मैं आया था वो तो हो गया, अब मुझे कोई काम नहीं है। फिर भी अच्छी बात है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या काम था बताओ तो सही। फिर उसने कहा लेकिन बताने का कोई फायदा भी नहीं है, है ना, हो गया वो काम तो। अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है हो गया तो, लेकिन क्या काम था। जब इंसिस्ट किया तो वो यूनियन लीडर कहता है 10 दिन पहले जो मैं आया था, मेरे बेटे की शादी थी, उसका इनविटेशन कार्ड देने आया था, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। अब डेस्टिनी क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगे सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अगर उस वक्त बिलीफ बीच में आई, होगी कोई नई डिमांड्स, सुबह सुबह दिन खराब, ये मान्यता कैसे आ जाती है, कैसे अपना रोल प्ले करती है पता भी नहीं चलता है। अगर उस वक्त अपनी मान्यता को चैलेंज कर दिया होता, नहीं नहीं उसको और कोई काम हो सकता है, जल्दी बुलाओ उसको, पहले उसको 10 मिनट दे दिया होता, उसने वो इनविटेशन कार्ड दिया शादी का, वो बच्चे के शादी का कार्ड दिया, उसको देने में खुशी होती थी। अगर वो मालिक ने कह दिया होता कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा, चलो आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, हाँ घर आपका बहुत अच्छी तरह से फले फूले, ये हो सुखी संसार बने आपका, कुछ अच्छी बातें बोल दिया होता। अच्छा शादी वाले दिन अगर नहीं भी जा सकता था, मैनेजर को बूके लेकर तोहफा लेकर भेज देता था, उसके बाद डेस्टिनी कैसी होती थी। तो अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में है, सो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ। वो मान्यता कैसे,
एक क्वेश्चन है,
हाँ चलो, बिलीव करने वाली बात अलग है और बिलीव मान्यता वो अलग चीज है। विश्वास, बिलीव किया माना विश्वास, है ना, विश्वास अलग चीज है, मान्यता अलग चीज है, समझा। तो मान्यता को हमें बदलना होगा। अब विश्वास आपने किसी पर रखा, आपको धोखा मिला और आप मान्यता बना लो ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये गलत है। नहीं, उस वक्त उसकी हालात परिस्थिति क्या भी हो सकती है और उस किस बात में आकर के उसने ऐसा किया हो क्या मालूम, ये गलत है।
गलत है
क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी संभव है, किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, ये संभव है। ये जनरलाइज कर लिया ना हमने, तो यही तो दुखी करता है, हमारी डेस्टिनी को खराब करता है, क्योंकि हमने जनरलाइज कर लिया और वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है और उसका वो इतनी अच्छी मदद करके हमारी डेस्टिनी पूरी बदल सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को इस तरह जनरलाइज कर लेना गलत है। या तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो उस व्यक्ति की और फिर आप सावधानी से बरतते हो उसके साथ, वो बात और है, बहुत बहुत कारण है उसके, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए अब आप यहां आए हैं, तो मैं यही कहूंगी आप अपनी मान्यता को भले रखना लेकिन साइड में रखो, है ना, और यहाँ के कुछ बातों को भी सुन करके देखो, फिर एनालाइज करो, एनालाइज करके आप अपने जीवन में कहाँ जो अच्छी चीज लगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखो, फिर देखो, वो तो फिर और बातें हैं और एस्पेक्ट्स है। इसलिए क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट में आज तो मैंने जनरल आपको बता दिया, जनरल ये सारी सिस्टम बताई, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का जो कोर्स है ना 16 सेशन का है, जिसमें एक एक चीज को उठाते हैं और उसकी गहराई में ले जाते हैं। इसलिए वो सब चीजें अगर खोलने, व्यवहार तो बहुत बड़ी चीज है, उसको अगर खोलने जाएंगे ना ये सब्जेक्ट को, तो और 2-3 घंटा लग जाएगा। इसलिए उसको यहां तो एक जनरल व्यू आपको दे दिया कि कैसे ये सारी सिस्टम, हमारी इंटरनल सिस्टम काम करती है, ये बता दिया, और उसके रूट्स कहाँ है ये भी एक ब्रीफ आइडिया दे दिया। बाकी बिलीफ कैसे बनती है, उसका पाथ कैसे होता है, कहाँ से शुरू, बहुत बड़ी है यहाँ, इसके बारे में भी हमने कुछ नहीं बताया आपको, है ना, कुछ नहीं बताया अभी तो, खाली एक जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया है। सेल्फ मैनेजमेंट हमें करना हो तो यहां यहां अटैक करो, ये सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, बिहेवियर मैनेजमेंट कोर्स करेंगे या पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स करेंगे या एटीट्यूडनल चेंज कोर्स कर, अब यहां से तो ठीक होने वाला है ही नहीं है, ये तो थर्ड स्टेज है ना। कैरेक्टर हैबिट्स पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स करेंगे, अब ये थर्ड स्टेज में पहुंच गया कैंसर का पेशेंट, उसके बाद ठीक होगा क्या, लास्ट स्टेज है उसके बाद, तो यहां करने से क्या मिलेगा, अब यहां करो ना। लेकिन यहां का कोई ज्ञान ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं अब तक, इसलिए तो सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स तो बहुत डीप है, 16 सेशन है उसके, हर सेशन डेढ़ डेढ़ घंटे के हैं, एक्सरसाइज है, गेम्स है, स्टोरीज है, कहानियां हैं, बहुत चीजें हैं जिसके आधार पर, जैसे एक कहानी मैंने आपको सुनाई कि भाई बिलीफ से डेस्टिनी कैसे बनती है, ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर के, दुनिया में ही समाज के ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर के हम वो कहानी के रूप में आपको देंगे ना, तब आपको हाँ यहाँ गलती होती है हमारी, यहाँ गलती होती है, ऐसे गलती होती है, ये गलती, वो तब समझ में आता है। इसलिए ये एक एक का टॉपिक है, ये थिंकिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 सेशन इसके ऊपर है, 1 सेशन इसके ऊपर है, इसलिए ये तो बहुत लंबा कोर्स है। यहाँ तो आपको मेडिटेशन रिट्रीट है, उसमें चखाचुखी सब मिल जाएगा, है ना, क्योंकि आप 3 दिन के लिए, तो 3 दिन भी नहीं, उसमें भी 1 दिन तो घूमने चला जाएगा, है ना, साइट सीइंग चला जाएगा, साइट सीइंग तो कोई नहीं कैंसिल करेंगे, माउंट आबू आने का लक्ष्य ही होता है, थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, तो इसलिए वो 2.5 दिन में आपको क्या मिल सकता है, लेकिन ओवरव्यू सबका मिल जाएगा। फिर ये चीज आपको डिटेल में, वहां सेंटर पर जाएंगे ना तो वहां आपको डिटेल में मिलती रहेगी, यहाँ थोड़ा टेस्ट कर लो, फिर वहां जाने के बाद आप टाइम निकालना। चलो, ओम शांति।